ओम शांति। स्वमान श्रेष्ठ स्थिति का आधार। ब्राह्मण जीवन में अगर हम श्रेष्ठ स्थिति बनाने की चाहना रखते हैं तो उसके लिए स्वमानधारी होकर रहना अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जैसे हम स्वमान में स्थित होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाती है। बाबा ने एक बार कहा था, स्वमान एक शब्द है। स्वमान एक शब्द को जीवन में धारण करेंगे तो बाप समान बनते जाएंगे। ब्रह्मा बाबा नंबर वन चले गए, उसका गुह्य राज भी यही है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से समान रहता था, मैं सारे विश्व का, सारी प्रजा का, मानवता का प्रजा पीता हूं। मैं सारे विश्व में नंबर वन नारायण महाराजा बनने जा रहा हूं। तो शुरू दिन से बाबा को नारायणी नशा रहता था और वो नारायणी नशा बाबा को अपने संपूर्णता के निशाने की ओर तेजी से लेकर गया। नशा ये काम करता है क्योंकि भगवान के हम बच्चे बने हैं, इसके लिए राजा का बच्चा राजकुमार होता है, उसकी ड्रेस अपनी होती है, ये राजकुमार की ड्रेस है। तो ऐसे ईश्वर के जो बच्चे होते हैं, ईश्वर की जो संतान होती है, उसका ड्रेस है ईश्वरीय नशा। यह ड्रेस पहनकर ही हमें सेवा के क्षेत्र में जाना है। ईश्वरीय नशा ही आत्मा की जान है और आत्मा की शान है। तो स्वमान कैसे हमें श्रेष्ठ स्थिति की ओर ले जाता है, उसके संदर्भ में मैं आपके सामने 10 बातें रखना चाहूंगा। स्वमान के इतने सुंदर लाभ होते हैं, उनको जानने से और धारण करने से स्वतः ही हमारी स्थिति निखरती जाती है। पहला लाभ, स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करना। जो स्वयं का राजा बनता है वही औरों का राजा सतयुग त्रेतायुग में बनता है। और जब आत्मा समान के सिंहासन पर अर्थात ऊंची शान में स्थित होती है तो हमारे मान बुद्धि रूपी कर्मचारी हमें सल्यूट मारते हैं, हमारी ऑर्डर पर पूर्ण रीति से चलते हैं, मान बुद्धि पर पूर्ण रीति से नियंत्रण और अनुशासन हमारा होता है। परिणाम स्वरूप स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति हम करते जाते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा स्वराज अधिकारी स्थिति की पावर होती है, उतना बड़ा राजा महाराजा वो सतयुग में स्वतः ही बनता है। राजा बनने के लिए जो पावर चाहिए उससे जास्ती होगी तो वो महाराजा बनेगा, उससे जास्ती है तो वो विश्व महाराजा बनेगा। इसलिए समान में रहकर हमें स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति को बढ़ाते जाना है। दूसरा लाभ, समान में रहना अर्थात सदा स्वचिंतन में मगन रहना। जब आत्मा ऊंची शान में रहती है, नशे में रहती है, तो मन में श्रेष्ठ चिंतन स्वतः ही चलने लगता है। और जब श्रेष्ठ चिंतन स्वचिंतन आत्मा में चलता है तो पर चिंतन से हमें मुक्ति मिलती है और स्वचिंतन का आनंद लेते रहते हैं और स्वचिंतन से परमात्म चिंतन की ओर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए ईश्वरीय नशे की अनुभूति को हमें बढ़ाते जाना है। तीसरा लाभ, समान में स्थित रहना अर्थात ईश्वर के बालक सो खजानों के मालक स्वयं को अनुभव करना। जो मेरे बाप के पास खजाने हैं उसका मैं मालिक हूं, उस पर मेरा अधिकार है। दुनिया में जो भी धनवान होते हैं उनको अपने धन का, अपने खजानों का नशा रहता है और वो उन खजानों को यूज करते जाते हैं। तो ऐसे समान में स्थित रहने से स्वयं को खजानों के मालिक समझने से उन खजानों को स्वयं के लिए, बाबा की सेवा के लिए हम यूज करते जाते हैं और जितना ये खजाने यूज करते जाते हैं उतना ये खजाने और वृद्धि को पाते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। जितना यूज करते हैं उतना वो खजाने वृद्धि को पाते रहते हैं। खजाने मेरे पास है लेकिन मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूं तो उसका लाभ मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन समान में स्थित रहने से उनकी स्मृति हमें रहती है और उसको हम यूज भी करते जाते हैं। चौथा लाभ, समान में रहना अर्थात आत्म विश्लेषण करना, सेल्फ एनालिसिस करना। जब समान में रहते हैं, एकांत में बैठते हैं तो आत्मा को अंदर झांक कर हम देखते हैं तो हमें आत्मा पर जो दाग सूक्ष्म होता है वो अच्छी तरह से पता चलता है, कमी के रूप में, त्रुटि के रूप में, खामी के रूप में। और जब वो दाग पता चलता है तो उसको मिटाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। कोई भी रोगी को अपने रोग का पता चलता है तो जब तक वो रोग से मुक्ति नहीं पाता है तब तक उसके पीछे ट्रीटमेंट लेता रहता है। तो ऐसे समान में स्थित रहने से हमें अपनी कमियों का, खामियों का पता चलता है, नहीं तो वो वर्षों तक कमी हमारे साथ चलती है और कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। इसलिए समाज में रहने से आत्मविश्लेषण हम सहज कर सकते हैं, कमियों को रियलाइज करते हैं और उसको परिवर्तन करने का पूरा प्रयत्न करते हैं और रियल गोल्ड हम बनते जाते हैं। पांचवा लाभ, समान में स्थित रहना अर्थात माया दुश्मन से सदा सेफ रहना। ये हमारा राज नहीं है, ये माया दुश्मन का राज है। हमारा राज सतयुग त्रेतायुग में होगा। बाबा ने हमें बड़ा कठिन काम दिया है, रहो दुश्मन के राज में, प्रॉपर्टी दुश्मन की साथ में, विकारों के अंश वंश के रूप में, और आपको नई दुनिया स्थापन करना है। इतना बड़ा कठिन काम हमें दिया है, तो दुश्मन के राज में सदा सेफ रहने के लिए ईश्वरीय नशे का कवच हमको पहनकर सदा रहना है। तो माया दुश्मन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकेगी, अपने तरफ आकर्षित करके रिझा नहीं सकती है। कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर हम अनुभव करते हैं। इस पुरानी दुनिया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत बड़ा लड्डू दिया है सत्ययुग त्रेतायुग के वर्षे के बादशाही का। माया भी हमें अपना लड्डू देने के लिए अपने तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास करती है। तो माया के लड्डू कौन से हैं? हाँ जी, रूप और रुपया, ये दो लड्डू माया के हैं। अपने तरफ आकर्षित करने का पूरा प्रयास करती हैं, लेकिन जब हम ईश्वरीय नशे में रहते हैं तो माया का प्रभाव हमारे पर बिल्कुल नहीं पड़ सकता है। हम एकदम सेफ रहते हैं और बाबा के कार्य में सदा व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं। छठवा लाभ, समान में रहना अर्थात आत्म अन्वेषण करना। आत्मा में जो सुषुप्त शक्तियां हैं, सोई हुई शक्तियां हैं, डॉर्मेंट शक्तियां हैं, उन शक्तियों को जगाना। हर एक आत्मा में असीम शक्तियों का भंडार छिपा हुआ होता है, लेकिन उन सुषुप्त शक्तियों को जगाने का काम एक ही समान करता है और कोई दूसरा तरीका उसके लिए नहीं है। जितना जितना हम समान में स्थित रहते हैं, सारी सोई हुई शक्तियां जागृत होती है, उभरने लगती हैं और हमें अपने पर हैरानी होती है, इतनी शक्तियां, इतनी प्रतिभा मेरे में है। वंडर खाते हैं अपने पर। लेकिन एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, अनुमान हमें हनुमान जैसा शक्तिशाली बनने नहीं देता है। हनुमान किसको कहते हैं? जो अपने हथेली पर पर्वत उठाता है, माना इतना वो बलशाली है, शक्तिशाली है। तो ऐसा हनुमान शक्तिशाली हमें बनना है तो रिंचक मात्र भी अनुमान संशय हमें अपने पर न हो। इसका ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है, जब हमारी छोटी दीदिया दादिया कराची में आई बाबा के पास, छोटी छोटी बच्चियां, माताएं, बाबा ने क्या किया, उनका जो सोया हुआ सामान था उसको बाबा ने ऊंचा उठाया, गिरा हुआ जो सामान था उसको ऊंचा उठाया, तो उनकी जो सोई हुई शक्तियां जागृत हो गई। तो आज हमारी दादियां देखो सारे विश्व में ललकार रही हैं, आध्यात्मिक क्रांति ला रही है। तालियां तो बजाओ जरा। कोई डिग्री नहीं है लेकिन बड़े बड़े गुरुओं को चैलेंज दे रही हैं, विश्व में क्रांति ला रही हैं। ये चमत्कार किसका है? सोमान का, क्योंकि सोमान ने उनकी शक्तियों को जगाया और उनके व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से ऊंचा बनाया और इसके बाद वो विश्व सेवक बनकर विश्व में सेवा करके क्रांति ला रहे हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना है, सोमान में स्थित रहने की विधि क्या है, इसको हमें समझना है। हम जो भी यहां बैठे हैं सभा में, बहुत रॉयल आत्माएं हैं, ओवनहार राजे महाराजे रानी महारानी इसी सभा में है। अभी नहीं है, सतयुग त्रेता युग में जरूर बनेंगे, लेकिन वो मस्ती, वो नशा, वो रुहाब चढ़ता रहे बढ़ता रहे, उसके लिए बाबा ने दिया ही ये सिंहासन। लो बच्चे, ये समान का सिंहासन लो और इस पर सदा बैठे रहो, डटे रहो, भगवान ने दिया है। अभी सोमान का टाइटल जो है वो सिलेक्शन कैसे करना है, सोमान के टाइटल का दुकान लगा है, बाबा ने 100 से जास्ती सोमान दिए, उसमें से आपको एक या दो सोमान आपको जो खुशी दिलाते हैं, नशा चढ़ाते हैं, मस्ती चढ़ाते हैं, वो एक या दो टाइटल सिलेक्ट करना है अपने आप। मान लीजिए आपने सोमान का टाइटल लिया है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब उसमें स्थित होने की विधि क्या है? सबसे पहले एकांत में बैठकर उस टाइटल पर अच्छी तरह से मनन चिंतन करो, इसके गहराई में जाओ। विश्व कल्याणकारी आत्मा के संकल्प कैसे होंगे? बहुत ऊंचे होंगे। उसके बोल कैसे होंगे? बहुत महान होंगे, सबको सुख देने वाले होंगे। उसके कर्म कैसे होंगे? प्रेरणादायक श्रेष्ठ होंगे। उसका व्यवहार कैसा होगा? ऐसा अच्छी तरह से मनन चिंतन करना है। बाद में ये सिंहासन है, देखो आप सभी यहां कुर्सी के सिंहासन बैठे हैं, पर बैठे हैं शरीर से, सभी बैठे हैं। अभी आत्मा को इस सिंहासन पर बिठाना है। मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है? ये सोमान का, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं मैं। आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, सिंहासन पर बैठ गए, आपका सोचना, आपका बोलना, कर्म करना, सब कुछ बदल जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा। चेहरा बोलेगा कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप सिंहासन पर जब बैठते हैं उनका चेहरा देखो, किसी द्वेष में जाते हैं उनकी चाल देखो, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, क्योंकि सीट मिली है, सिंहासन मिला है। तो ऐसे भगवान ने हमें ये सोमान का सिंहासन दिया है, इससे हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कोई कितना भी अपोजिशन करे, इसको मैंने नहीं छोड़ना है। कोई एमपी एमएलए बनता है, कितना भी अपोजिशन होता है, छोड़ता है सीट? तो ये सोमान के टाइटल हमें बाबा ने ऐसे ही नहीं दिए हैं, हमने द्वापर युग से बहुत मेहनत की है, बहुत भक्ति की है, उसके परिणाम स्वरूप बाबा ने ये हमें सोमान दिए हैं। तो उसको जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। डॉक्टर कोई जन्म से डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर जन्म से इंजीनियर नहीं होता है, वो पढ़ाई पढ़ता है, अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, फिर 24 घंटे उसको भान रहता है मैं नींद से भी उठा, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। ये लौकिक समान हो गया और ये है अलौकिक समान। ठीक है, सातवां लाभ, समान में स्थित रहना, अर्थात समय के सबसे महत्वपूर्ण खजाने को सफल करना। ये संगम युग का छोटा युग है, ये समय बहुत अमूल्य समय है। सारे कल्प के लिए जो प्राप्तियां हमें करनी है उसका बीज बोने का यह समय है, श्रेष्ठ भाग्य करने का समय है, निर्माण करने का समय है। ये स्मृति रहने से हर सेकंड को हर पल को हम सफल करते रहते हैं और अपने भाग्य का सितारा चमकाते रहते हैं। समय का खजाना सबसे वैल्यूएबल खजाना है, जितने भी खजाने बाबा हमें देते हैं सबसे मूल्यवान खजाना है समय का। बोलिए क्यों, कैसे? हाँ जी, जो समय जाता है वो वापस नहीं आता है, बहुत अच्छी बात है। और चढ़ती कला का समय है, बहुत अच्छी बात है। कुछ गहरी बात बताऊं, समय का खजाना ही अन्य खजाने पाने का आधार है, बेसिस है, और कोई दूसरा खजाना नहीं है आधार। तो समय के खजाने को हम सफल करते हैं उतना अन्य सभी खजाने सफल करते हैं, उतना हमारा भाग्य को हम चमकाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं समय को सफल करना सबसे बड़ी शक्ति है। सफल, सफल, अच्छा फल प्राप्त करना, अच्छी प्राप्ति करना, उसको कहते हैं सफल करना। आठवीं बात है समान में स्थित रहना, अर्थात रॉयल संस्कारों को धारण करना। सतयुग में आपको राजा महाराजा रानी महारानी बनना है तो वो शरीर छोड़ने के पहले रॉयल संस्कार आत्मा में धारण करने हैं, घर जाने के पहले। जब वो संस्कार लेकर हम जाएंगे परम धाम में रेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक राजा महाराजा के घर में हमारा जन्म होगा, ऑटोमेटिक होगा। लेकिन वो संस्कार अभी हमने धारण करने हैं। कैसे करेंगे? सिंपल विधि है, हमेशा श्रेष्ठ समान में रहना है, सिंहासन पर बैठकर ईश्वर नशे की अनुभूति होती रहेगी, परिणाम स्वरूप ऐसे श्रेष्ठ संकल्प आपके मन में चलते होंगे और ऐसे श्रेष्ठ बोल आपके मुख से निकलेंगे और श्रेष्ठ कर्म आप करते जाएंगे और श्रेष्ठ संस्कार आपके धारण होते जाएंगे और वो संस्कार हम वापस अपने घर ले जाएंगे। शुरुआत कहां से हुई? श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहने से शुरुआत हुई। चेहरा हमारा बोलता है कि हम किस क्वालिटी की आत्मा हैं। फेस, ये फीचर्स, फेस के जो नशा है, मस्ती है, वो बताती है कि कौन सी पोजीशन आप सतयुग में पाने वाले हैं। आंखों में ईश्वरीय नशे की झलक सदा अनुभव होती रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। जैसे शराबी एक बोतल के बजाय दो बोतल चढ़ा देता है, आंखें उसके लाल दिखाई देती आंख की तरह, तो ऐसे ईश्वरीय नशा जब आत्मा को चढ़ता है तो आंखों से दिखाई देता है कितनी रॉयल्टी, कितना ऊंचा नशा, कितना ऊंचा पद आप प्राप्त करने वाले हैं, चेहरा बोलता है। तो इसलिए हमें श्रेष्ठ सम्मान में स्थित रहकर ऐसे रॉयल संस्कारों को धारण करते जाना है। नौवा लाभ है सम्मान में स्थित रहना, अर्थात सबकी विशेषताएं देखते रहना। जब हम ऊंची सम्मान में रहते हैं तो हमें सबकी विशेषताएं नजर आती है, किसी की कमी नजर ही नहीं आती है, क्योंकि द्वापर युग से माया ने हमें चश्मा पहना दिया है कमियों को देखने का, त्रुटियों को देखने का। तो दूसरा कमियां छोड़ना चाहता है और उस कमियों को हम ग्रहण करते जाते हैं, क्योंकि चश्मा गलत पहना हुआ है। बाबा कहते हैं इस चश्मे को फेंक दो और ये विशेषता देखने का चश्मा पहनो और सबकी विशेषताएं देखो। हर एक आत्मा में बहुत सुंदर विशेषता है। इस संसार में एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसमें विशेषता नहीं है। आखिर तो मनुष्य का जन्म मिला है, नहीं तो कीड़े माकोड़े के योनि में चला जाता, कुछ तो उसने अच्छे कर्म किए हैं। तो हमें क्या करना है, सबकी विशेषताएं देखना है। जैसे मधुमक्खी हरेक फूल से मधु लेती है, ऐसे हरेक रूहानी गुलाब आत्मा से हमें मधु लेना है, विशेषता लेना है, गुण ग्रहण करना है। कमी हमें नहीं देखनी है, तो ऑटोमेटिक हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती जाएगी। दुर्योधन को बोला गया इस सभा में जाओ और इसमें कोई अच्छा व्यक्ति है तो ढूंढ के आओ। उस सभा में चक्कर लगाता गया, कहते यहां तो इसमें एक भी अच्छा आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, अर्जुन को उसी सभा में भेजा, इसमें से कोई बुरा व्यक्ति है तो ढूंढ के लाओ। यहां तो कोई एक भी आत्मा बुरी नहीं है, एक भी व्यक्ति बुरा नहीं, बताओ भाई। उसको एक भी अच्छा आदमी नहीं दिखाई दे रहा और इसको एक भी बुरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो हमें, हम बहुत महान आत्माएं हैं, महान आत्मा की महानता है, विशेष आत्मा की विशेषता है, वो हमेशा सबकी विशेषताएं देखता रहता है। क्योंकि हम किसी की कमी देखते हैं तो हमारा उस व्यक्ति से स्नेह थोड़ा कम होता है, और विशेषता देखते हैं तो हमारा स्नेह बढ़ता है। तो इस सारे परिवार को बाबा ने स्नेह के धागे से बांधा है, इस गुलदस्ते को। तो हमारा आपसी प्यार, रूहानी स्नेह सदा बढ़ते रहे, इस पर हमें ध्यान देना है। और दसवां लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ, स्वमान में स्थित रहना, अर्थात स्व पिता से कनेक्ट होकर रहना। क्योंकि जब हम स्वमान में रहते हैं, मन बुद्धि हमारी एक तो न्यारा होते हैं दुनिया से, इस कलयुग की दुनिया से न्यारा होने के बाद मन बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होती है, नशे में झूमती है, और ऊपर वो हमें ले जाती है बाबा के पास बिठा देती है। ये काम ईश्वरीय नशा करता है, स्वमान करता है। अगर हम स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो हमारी मन बुद्धि इसी घटिया दुनिया में भटकती रहती है, मटकती रहती है। और जैसे स्वमान में स्थित रहे, फ्लाइट एक सेकंड में मिलती है परम धाम की, हमें बाबा के सामने बिठा देती है। और जैसे हम बाबा के पास बैठ गए, कनेक्शन जुड़ गया, तो कलेक्शन होना शुरू हो गया। स्वपिता से कनेक्ट होकर शक्तियों को हम जमा करते जाते हैं। और समान में रहने से हमारी मन की जो वृत्ति है बहुत शांत और शीतल रहती है, जिससे एकाग्रता की शक्ति भी हमें अच्छी तरह से अनुभव होती जाती है। तो आप देखना, यहां अनुभव करना, श्रेष्ठ समान में स्थित रहकर ऊपर ही रहेंगे, आप नीचे आएंगे नहीं, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, बाबा के पास बैठे हुए हैं। ऊपर वाले के पास बैठना है तो उपराम रहना होगा, और उपराम रहने के लिए, ऊपर वाले का हाथ पकड़ने के लिए समान का साथ लेना होगा। तो समान का साथ हमें परमात्मा का हाथ में हाथ देता है, कनेक्शन जुड़ा देता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा शुरू दिन से समान धारी होकर रहे, धारी माना धारण करना, अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना। 19 मार्च 1988 में ओम शांति भवन की स्टेज पर मैं बाबा से मिल रहा था, तो बाबा ने मुझे समान का टाइटल दिया, वरदान दिया, विश्व परिवर्तक आत्मा हो, विश्व परिवर्तन का कार्य बाप के साथ कर रहे हो, परिवर्तन शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, परिवर्तन शक्ति के द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त कर रहे हो, करते रहोगे। मैं ये क्यों बता रहा हूं, जब मुझे स्मृति आती है मैं आत्मा विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, एक सेकंड में मुझे परम धाम की फ्लाइट मिलती है, दूसरा सेकंड नहीं लगता है, ये मेरा अनुभव है, एक सेकंड नहीं लगता है। मेरे फेवरेट समान है तीन, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, और मैं विजय आत्मा हूं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप समान का टाइटल सिलेक्ट कीजिए और उसको अपने जीवन का टाइटल अनुभव करो। किसी को भारत रत्न का टाइटल मिलता है, क्या मस्ती में रहता है, प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने मुझे भारत रत्न का टाइटल दिया है, बस ना, हमें तो विश्व पिता ने और विश्व के रत्न के रूप में इतने बड़े बड़े टाइटल दिए, कोई अधिकारी ने नहीं दिया है, दुनिया की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, सर्वोच्च जो सत्ता है, उस सत्ता ने हमें ये सम्मान के टाइटल दिए हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम उसको टाइटल को स्वीकार करते हैं तो अंदर थोड़ा सा मन खाता है, पता नहीं ये टाइटल मेरे लिए सही है या नहीं, पता नहीं बाबा ने मेरी ऐसी झूठी मूठी तो महिमा नहीं किया, ऐसे ही तो टाइटल नहीं दिया। इस संसार में भगवान ही एक ऐसे है जो सदा सत्य बोलते हैं, जो भी टाइटल दिए हैं हमारे लिए वो सत्य हैं और यथार्थ हैं। लेकिन मन क्यों कभी कभी स्वीकार नहीं करता है, उसका कारण क्या है, इसको हमने ढूंढना है। उसका कारण ये है, हम सतयुग में राजे महाराजे रहे, रानी महारानियों के रूप में हमने राज किया, बहुत रॉयल परिवार में रहे, लेकिन जैसे हमने द्वापर युग में कदम रखा, दुश्मन रावण ने हमें किडनैप किया और जेल में ठोक दिया 2500 साल तक। कोई बड़ा व्यक्ति मिनिस्टर एक दिन भी जेल में जाता है, अब जेल से बाहर आता है चेहरा छिपाता है, पब्लिक मुझे देख न ले, मन खाता है मैं जेल से आया हूं। तो हम भी 2500 साल जेल में रहे, अंग्रेजों की भी जेल में रहे, उसके कारण आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है हीन भावना, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, वो हमें ऐसे श्रेष्ठ समान को स्वीकार करने में थोड़ा सा बाधा डालता है। तो हमें क्या करना है, द्वापर कलयुग के तरफ नहीं देखना है, सतयुग और त्रेतायुग के तरफ देखना है, हम ही वो राजे महाराजे होनहार बनने वाले हैं। इसलिए बाबा ने जो हमें समान के टाइटल दिए हैं, दिल से हमें उसको स्वीकार करना है और ये गुलामी से आजादी प्राप्त करें। आजाद पंछी बनना माना क्या? पिंजरे में फंसने वाले पंछी का हाल देखो, रोता हुआ पंछी दिखाई देता है। बाबा ने हमें आजादी दी है, आ जा दी। जब चाहे इस पिंजरे से मैं पंछी आत्मा उड़ जाऊं, बाबा के पास बैठ जाऊं, और जब चाहे इस पिंजरे में बैठ जाऊं, कार्य करने के लिए आऊं। इसको कहते हैं आजाद पंछी बनना। तो हमें इस आजादी की अनुभूति करना है, इसलिए सोमान के टाइटल को स्वीकार करके उसमें स्थित रहना है। स्वमान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। कोई मान दे न दे मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मुझे कोई परवाह नहीं है, भगवान ने मुझे मान दिया है, इतने बड़े बड़े टाइटल से नवाजा है, तो भगवान ने मुझे मान दिया है तो मनुष्यात्माओं से मान लेने की इच्छा हमने रखना ही नहीं है। इसलिए जो सम्मान में स्थित रहता है वो सबको सम्मान देता है। प्रकाश मणि दादी जी ने जाते जाते एक बात कही थी, दादी जी से प्यार है, दादी जैसा बनना चाहते हो तो दो शब्दों को धारण करो, सदा सम्मान में रहो और सबको सम्मान देते रहो। तो जो सम्मान में रहता है वही सबको सम्मान देता है। एक स्लोगन कभी भी हमें भूलना नहीं है, मान देने वाला महान बनता है, माननीय बनता है। जो देगा मान वही बनेगा महान। बाबा विश्व पिता कितने बड़े बड़े टाइटल देकर हमें मान दे रहा है। बाबा बाबा से हमें सीखना है, सबको मान देना है ना। हमें जेब से कुछ पैसा नहीं देना है किसी को, केवल दिल बड़ा रखना है और बड़े दिल से सबको सम्मान देना है, सबकी अच्छाई देखना है, बस केवल दिल बड़ा रखना है। तो इसलिए हमें सबको सम्मान देना सीखना है, ये बड़े व्यक्ति की निशानी है। कोई कहेगा मैं बहुत बड़ा हूं तो उसकी निशानी है सबको सम्मान देना। किसी को हम सम्मान देते हैं, किसी को नहीं देते हैं, इसका मतलब है हम उसकी कमी देख रहे हैं जिसको हम नहीं दे रहे, या दूसरा उसका मतलब है मुझ आत्मा में कुछ अंश देहाभिमान है, सूक्ष्म अहंकार है। तो शुद्ध नशा और अशुद्ध अहंकार में क्या अंतर है? सिंपल है, जितना ऊंचा नशा होगा उतना वो निर्माण व्यक्ति होता है। ये अशुद्ध अहंकार वाला निर्माण नहीं रहता है, वो अकड़ा हुआ रहता है। तो इसलिए हम सभी को यही सीखना है, सबको सम्मान देना है, लेकिन पहले स्वयं को मान देना है। हम क्या करते हैं, दूसरों को मान देते हैं, खुद को मान देना भूल जाते हैं। नहीं, पहले खुद को मान देना है, फिर सबको मान देना है। ठीक है, ओम शांति।